राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। भक्त वृंद सब जो जहाँ है, कोई सऊदी में है, कोई दुबई में है, कोई दिल्ली में है और कोई अन्य स्थानों पे है, जो जहाँ भी सुन रहे हैं आप सबका लॉकडाउन के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 12वें अध्याय के अंतर्गत वृत्तासुर की महिमामयी मृत्यु या सदगति का जो वर्णन है उसको आज पूर्णाहुति पे पहुंचाएंगे। तो प्रसंग ऐसे चल रहा है कि युद्ध भूमि है, देव असुर संग्राम चल रहा है। देवताओं का जो मुख्य सेनापति इंद्र है, जिसके हाथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद से और शक्ति से और दधीचि मुनि की तपस्याओं से हाथ में वज्र है और नारायण कवच, उसने भगवान के पवित्र नामों का कवच धारण किया हुआ है और असुरों के अधिपति के रूप में, सेनापति के रूप में यज्ञ से उत्पन्न तुष्टा का पुत्र वृत्तासुर है और इंद्र के वज्र गिरने के ऊपर वृत्तासुर उसको उपदेश दे रहा था कि कर्तव्य कम कर्म करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हानि का लाभ का विचार नहीं करना चाहिए, जय विजय का विचार नहीं करना चाहिए कि पराजय होगी कि जय होगी, जीतेंगे या हारेंगे, मरेंगे या जिएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहना चाहिए। सदा रहने वाला और नित्य विजयी तो केवल भगवान ही है, बाकी सब कर्मों के अधीन है। और इंद्र, देखो मैं हारा हुआ हूँ, बाजू कटी है, फिर भी मैं युद्ध में पीछे नहीं हट रहा हूँ, तो आपको तो बड़े उत्साह के साथ अपना शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, मैं आपका शत्रु आपके सामने खड़ा हूँ। और ऐसे कह के जब वृत्तासुर समाप्त अपना प्रवचन पूरा किया तो सुखदेव महाराज कहते हैं, इंद्र ने जब ये सब कुछ सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और फिर उन्होंने निसंकोच अपना वज्र उठा लिया और मुस्कुराने लगे और कहा, सोचा कि तो ऐसा असुरों में कैसे हो सकता है ना, ऐसे उदाहरण हैं, पहले कभी प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, महान भागवत हुए, बलि महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन आत्मनिवेदन भक्ति के उदाहरण हुए, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। तो उस दृष्टि से ये वृत्तासुर के अंदर असुरी भाव चला गया है। यहाँ बहुत अच्छी बात थी कि असुरों में रजोगुण का प्रभाव होता है, अब ये सत्वगुण से भी ऊपर उठ रहा है। तो वृत्तासुर का परिभाषा देखें कि असुरी भाव न हमारे सच्चिदानंद जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, उसको तीनों गुणों के प्रभाव के कारण असुरी भाव का उसके ऊपर भारी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो नीचे के गुण हैं, तमोगुण और रजोगुण, इनसे हमको ऊपर उठ के सत्वगुण में तो आना ही चाहिए। जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे तब तक हम भगवान के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का विचार। क्या उनका उद्देश्य भी ये था कि मैं पूरा विश्व इस वक्त रजो और तमोगुण के इतने प्रभाव में प्रभावशाली है कि उनके अंदर सात्विक वृत्ति जब तक जगाई नहीं जाएगी तब तक आध्यात्मिकता के पथ के ऊपर उन्नति करना संभव नहीं है। और इस कान की स्थापना ही लोगों को सत्वगुण में लाने के लिए है असल में। तो सत्वगुण में कैसे आया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र कहता है कि आपका असुरी भाव चला गया, असुर तो रजोगुण से प्रेरित होते हैं, आपके हृदय में भगवत भक्ति, वासुदेव की भक्ति जागृत हो गई है। और ये श्लोक जो कल हमने छोड़ा था, यहाँ से आज कथा शुरू करेंगे, 22वां श्लोक है, ये इंद्र कह रहा है। अब इंद्र देवराज इंद्र है और इंद्र भी भगवान का एक प्रकार से भक्त है और इंद्र के ये वचन है, यस्य भक्ति भगवती हरहो निःश्रेयः ईश्वरे विक्रतो अमृतो अम्बोधो किमक्षुद्र ही खात उद्गही। कल इसका शब्द अर्थ तो हमने विचार किया था, यस्य भक्ति भगवती, जिसके पास भगवान की अनन्य भक्ति आ गई है, जिसके हृदय में भक्ति का उदय हो गया है। ये असल में जो भाव भक्ति है, भक्ति तीन प्रकार की है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जो साधन भक्ति है वो भी दो प्रकार की है, वैधी साधन भक्ति और रागनुगा साधन भक्ति। लेकिन साधन भक्ति हमको करनी है, हमारी इंद्रियों से करनी है, हमारे मन से करनी है, हमारी वाणी से करनी है। तो साधन भक्ति तो हमको करनी है, उसका साधन तो हमको करना है। भाव भक्ति हमारे हृदय में पहले से है, भाव भक्ति सबके हृदय में भगवान ने भर के भेज दी है। तो ये हृदय का भाव है भाव भक्ति। तो वो जो भक्ति है हरि की, अगर किसी के हृदय में जागृत हो गई है, क्यों है तो पहले से, भक्ति भाव भक्ति सबके हृदय में पहले है, साधन भक्ति से उसको जागृत करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, वो रहस्य वो ये है असल में, कल के श्लोक में ये बात आई थी कि बीज के रूप में भाव भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन बीज को अंकुरित होने के लिए पानी भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। तो ये जो प्रकाश और जल के रूप में कोई चीज हृदय में जब प्रवेश करती है तब भाव भक्ति अंकुरित होती है, प्रफुल्लित होती है, फूटती है और उसका प्रभाव दिखता है। तो ये जल और प्रकाश क्या है? जल और प्रकाश है भगवान की संवित और हलादिनी शक्ति। संवित शक्ति भगवान की पहचान कराती है, हलादिनी शक्ति भगवान का रस आस्वादन कराती है, आनंद की अनुभूति कराती है। तो भगवान की शक्ति जो संदनी, संवित और हलादिनी, ये तीन शक्तियां हैं, इसमें से ये स्वरूप शक्ति संवित और हलादिनी जब किसी के हृदय में प्रवेश करती है तो भाव भक्ति जागृत होता है। लेकिन ये कहाँ से प्रवेश करेगी? इसके प्रवेश करने के लिए या तो भगवान की कृपा हो, जो बहुत कम होती है, सबके ऊपर नहीं हो सकती है, और किसी एक के ऊपर भी भगवान विशेष रूप से नहीं करते हैं, वो तो बहुत रेयर है। दूसरी, ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है जो भक्ति का पोषण करती है, भाव भक्ति का उदय करती है, ये किसी रसिक भक्त से, हृदय से हमारे को प्राप्त होगी। इसलिए भक्तों के संग से ये प्राप्त होती है। इसलिए कल इंद्र कह रहा था प्रहलाद को तो नारद का सानिध्य मिला, उसके हृदय से ये प्रेम, वहाँ असल में वहाँ तो ये भक्ति का स्तर जो है कि उसके हृदय से प्रेम का वहाँ हुआ, लेकिन इस वृत्तासुर को तो कोई नहीं मिला था, तो इसके हृदय में ये, तो हम अपने भक्तों के लिए ये बात कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भाव भक्ति के उदय के लिए हमको भगवान के प्रेमी रसिक गुरुजनों के चरणों के शरण में हमेशा ये उनसे, उनके हृदय से इस भगवान की अंतरंग स्वरूप शक्ति संवित और हलादिनी को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए। और जब कोई ऐसे करुणा करके अपने हृदय से वो हमारे हृदय में दे देगा तो हमारा भाव भक्ति एकदम प्रकट हो जाएगा। तो ये भाव भक्ति का स्तर जो है, यस्य भक्तिर भगवती हरौ, हरि के प्रति, भगवान के प्रति ये भक्ति, ये भगवान कैसे हैं जिसके प्रति ये भक्ति हो, नेह श्रेय ईश्वरे है, नेह श्रेय ईश्वरे, प्रभुपाद जी का सभी मंगल कार्यों को देने वाला, मुक्ति से लेके अपने धाम की प्राप्ति करने कराने वाला भगवान। नेह श्रेय मुक्ति भी इसका अर्थ है, और ईश्वर उनका स्वामी मतलब मुक्ति देने वाला, सबका स्वामी, जीवन की सफलता देने वाला। तो जिस के हृदय में भाव भक्ति का भगवान के लिए उदय हुआ है, कौन से भगवान के लिए, जो सबको मुक्ति पर्यंत सब कुछ दे सकता है और अपने धाम का प्रवेश भी दे सकता है, अपना सानिध्य भी दे सकता है, अपना पार्षद भी बना सकता है, जिसको ये मिल गई है विक्रणीतः विक्रणीतः, विक्रणीतः का मतलब वो खेल रहा है, क्रीड़ा करने का मतलब है खेलना, जैसे बच्चा खेलता है ऐसे वो आनंद में खेल रहा है। और जहाँ खेलना, कहाँ खेल रहा है, अमृत अम्बोधव, अमृत के सागर में खेल रहा है। तो सागर में खेलना होता है तैरना, तो अमृत के सागर में तैर रहा है, अमृत के सागर में तैर रहा है। कौन सा अमृत? भक्ति रस अमृत। ये सागर कौन सा है? ये भक्ति के रस का अमृत का सागर है। और उसमें वो अवगाहन करता है, वो तैरता है, वो आनंद ले रहा है। और फिर इंद्र कहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को किम क्षुद्र ही तुच्छ पानी के खड्डों में उसको स्नान करने का या तैरने का या खेलने की क्या जरूरत है? भक्ति के रस के अमृत में जो आनंद किलोल कर रहा है, जल कीड़ा कर रहा है, उसको क्षुद्र छोटे पानी के खड्डों में खेलने की क्या आवश्यकता है? तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इसमें यह है कि वृत्तासुर पहले ही कह चुका है वो क्षुद्र पानी के खड्डे क्या हैं, जिनको वृत्तासुर ने पहले ही कहा कि मुझे नहीं चाहिए, और सारी दुनिया को वो चाहिए लेकिन भक्त को वो नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त को निश्रेय आश्रय ईश्वर का आश्रय मिल गया है। सब शुभ मंगल देने वाले का जब सानिध्य मिल गया है तो फिर वो कुछ नहीं चाहिए। वो क्या था? ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा। न तो इंद्र का लोक चाहिए, न ध्रुव का लोक चाहिए, न ब्रह्मा का लोक चाहिए, न धरती के ऊपर साम्राज्य चाहिए, न रसातल का राज चाहिए, न योग की सिद्धियां चाहिए, न मुक्ति चाहिए। ये सब क्या है? ये सब जिस जहां भोग करने का, जहां भौतिक भोग की भावना है, वो सब छोटे से तुच्छ खड्डे के पानी के बराबर है। जबकि भक्ति का रस जो है वो अनंत सागर है। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त क्या चाहता है? शुद्ध भक्त ऐसी किसी बहुत बड़ी उपाधि को नहीं चाहता है, कुछ ऐसे पद को नहीं चाहता है इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के किसी पद को नहीं चाहता है। लेकिन क्या चाहता है? भक्त केवल चाहता है भगवान का सानिध्य। और फिर प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, ये सानिध्य किसका, यहां लिखा है किसका सानिध्य चाहता है? बोला जैसे वृंदावन में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहती है, ये हो गई माधुर्य भाव की राग अनुगा भक्ति। और फिर जैसे कृष्ण के माता पिता नंद और यशोदा कृष्ण का सानिध्य, ये है असल में ये राग, हम भक्तों के लिए ये राग अनुगा है। और ये जो भक्त हैं ये है राग आत्मिक भक्त, इनका जीवन भगवान के प्रेम से परिपूर्ण भरा हुआ है, ये सिद्ध हैं। तो या तो माधुर्य रागनुगा भक्ति, वात्सल्य रागनुगा भक्ति, फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, नहीं तो भगवान के मित्र श्रीधामा सुधामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण, जो भगवान के मित्र हैं उनका, उन जैसे उनको सानिध्य, ऐसा सानिध्य चाहता है। और फिर लिखा है भगवान के सेवक वृक्तक पत्रक आदि, उनकी तरह भगवान का सानिध्य चाहता है। और प्रभुपाद लिखते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का संग वृंदावन के वातावरण में चाहता है, वृंदावन के सुंदर वातावरण में चाहता है। अब ये जो चार लाइनें हैं, ये असल में राग अनुगा भक्ति की ओर सीधा स्पष्ट रूप में राग अनुगा भक्ति का वर्णन है। अब राग अनुगा भक्ति आप लोग सब अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है तो राग अनुगा भक्ति साधन भक्ति का एक अंग है। और ये साधन भक्ति का अंग है। कम से कम निष्ठा तक पहुंचने के बाद ही राग अनोगा भक्ति का साधन शुरू होता है। आदव श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के बाद राग अनोगा साधन को अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन राग अनोगा साधन का मतलब क्या है? जो भगवान के वृंदावन के नित्य पार्षद हैं, नित्य परिकर हैं, जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है राधा रानी और गोपियाँ, नंद यशोदा और गोप गोपियाँ, भगवान के ग्वाल बाल मित्र और भगवान के सेवक, इनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। ये सब राग आत्मिक भक्त है, इसका मतलब है इनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग, इस ऐसा राग भरा हुआ है कि वो बने हुए ही राग के हैं। वो पहले सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, वो सिद्ध भक्त हैं और हम साधन कर रहे हैं। जिस जिस भक्त में जो जो सेवा हमको अच्छी लगी, गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं माधुर्य रस में वो अच्छा लगे, मंजरियां सेवा करती हैं कृष्ण की माधुर्य रस में वो अच्छा लगे, या नंद यशोदा सेवा करते हैं कृष्ण की वात्सल्य प्रेम में वो अच्छा लगे, या ग्वाल बालों के संग कृष्ण गैया चराते हैं बछड़े चराते हैं उनके कंधे पे चढ़ते हैं उनके साथ खेलते हैं ये लीला अच्छी लगे। तो जो भक्त विशेष रूप से, मैं उदाहरण देता हूं, किसी को मानो गोपियों की सेवा बहुत कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति जो गोपियों की सेवा है उसमें अनुराग हो गया है, तो विशेष गोपी ललिता है या उसकी कोई सहेली मंजरी है रूप मंजरी, वो कैसे कैसे सेवा करके राधा कृष्ण को प्रसन्न करती है, वो उसके पीछे चलेगा, उसके चरण चिन्हों में चलेगा, उसका अनुगामी बनेगा। तो राग आत्मिक भक्त का अनुगामी बनेंगे तो उसको राग अनुगा भक्त कहेंगे। ऐसे किसी के मन में भगवान से सखा भाव है तो जो सखा श्रीधामा है, सुधामा है, मधुमंगल है, जिस सखा के प्रति, जो सखा आप देखें कि कृष्ण की लीला में बहुत कृष्ण को प्रिय है और क्या करता है, जिसको कृष्ण बहुत पसंद करता है, कैसे वस्त्र पहनाता है, क्या क्या काम करता है, तो उस प्रकार के भावों को अपने हृदय में जागृत करना है तो सखा रागनोगा भक्ति हो जाएगी। और वही कथा, वही कीर्तन, वही भागवत का प्रसंग पढ़ना है जहाँ उन भक्तों के द्वारा कृष्ण को के प्रेम की पुष्टि मिलती है। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, इसमें तात्पर्य में ये बहुत महत्वपूर्ण और सीधा सा भगवान के वृंदावन की मधुर सान्निध्य की प्राप्ति शुद्ध भक्त के हृदय में सदा जागृत होनी चाहिए, उसको प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। और नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, यही कृष्ण भक्त की सबसे उच्चतर अभिलाषा है। और फिर कहते हैं भगवान विष्णु के भक्त वैकुंठ की प्राप्ति चाहते हैं। ये दूसरी लाइन वैदी भक्ति, वैदी साधन भक्ति से वैदी भाव और वैदी प्रेम की, प्रेम और उसका फल वैकुंठ की प्राप्ति। तो ये दो, ऊपर वाली लाइन में रागनोगा भक्ति है और नीचे वाले लाइन में वैदी भक्ति है। वैकुंठ में जाना है तो वैदी भक्ति है, और नारद वैदी भक्ति के अंतर्गत वैकुंठ तक ही उसकी रसाई जनरली है, क्योंकि वैदी साधन भक्ति का वो उदाहरण है, वैदी प्रेम और वैदी भाव का उदाहरण है। वैदी साधन भक्ति करेंगे तो वैदी साधन भाव उदय जागृत होगा और वैदी प्रेम प्राप्त होगा और वैकुंठ की प्राप्ति होगी अथवा द्वारका की। अगर रागनोगा भक्ति का साधन करेंगे तो रागनोगा भाव उदय होगा और राग अनुभव होगा, भाव से रागनोगा प्रेम होगा और उससे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन के मधुर वातावरण में सानिध्य प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि वैकुंठ की प्राप्ति, फिर प्रभुपाद एकदम लिखते हैं कि कृष्ण भक्त यहां तक के वैकुंठ की भी सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते। वैकुंठ में जो वैभव है उसको भी वो नहीं चाहते, वो तो वापस गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। ये गोप कुमार ब्रद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी को गोप कुमार की यात्रा वैकुंठ तक जाने के बाद भी संतुष्टि न होने के कारण वो अपने गुरु की प्रेरणा से फिर गोलोक में जाता है, जहाँ श्री कृष्ण उसको आलिंगन करते हैं। तो उसमें विशेष रूप से सनातन गोस्वामी पाद ने इन सब बातों का वर्णन किया है। तो यहाँ वो वृंदावन पहुँचना चाहता है और वहाँ क्या करना चाहता है, भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है। यहाँ लिखा है एटर्नल पास टाइम, नित्य लीला, जो भगवान की नित्य लीला है उसमें प्रवेश करना चाहता है। इसका मतलब भगवान की लीला नित्य हो रही है। भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक लीला भगवान की को कहते हैं नित्य वास्तविक लीला और दूसरी भगवान की लीला को कहते हैं व्यवहारिक और नित्य वास्तविक अप्रकट लीला। नित्य वास्तविक अप्रकट लीला ये तो हमेशा हो रही है, दूसरी को कहते हैं प्रकट व्यवहारिक अवतार काल की लीला, वो थोड़े समय के लिए होती है। जैसे भागवत में जो लीलाएं वर्णन है वो सब प्रकट लीलाएं हैं, वो सब व्यवहार में अवतार काल की लीलाएं हैं, लेकिन भगवान की और अनंत लीलाएं हैं जो अप्रकट हैं और जो नित्य हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं, जो ब्रज के हमारे गोस्वामी गण हुए हैं, उनकी हृदय में उन लीलाओं का स्फूर्ति होती रहती है और वो लीलाएं सामान्य जो भागवत आदि अन्य ग्रंथों के अंदर उन लीलाओं का वर्णन नहीं है, लेकिन हर एक भक्त के हृदय में वो लीला घटित हो रही है, उसका दर्शन होता है। ऐसे बहुत से भक्तों के हृदय में नित्य लीलाओं में प्रवेश जिनको है, जिन्होंने स्वरूप की सिद्धि कर ली है, वो इन नित्य लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ उन नित्य लीलाओं का वर्णन है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक सुख संसार का उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वो तो एक खड्डे के पानी के बराबर है। जब ये भगवान के सानिध्य का सुख जो है, ये तो भक्ति के सागर का सुख है, उसमें भक्त क्रीड़ा करना चाहते हैं और तैरना चाहते हैं। तो यहाँ ये तात्पर्य पूरा होता है और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अब निर्णय दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुकवाच इति ब्रवाणावान्यो अन्यम धर्म जिज्ञासया नृप युजधाते महावीरौ इंद्रवृतौ युद्धान्पति। सुखदेव महाराज कहते हैं एक दूसरे के ने इस प्रकार से प्रवचन किया, किसके विषय में, धर्म जिज्ञासया, हे राजन परीक्षित महाराज धर्म के विषय में, कि धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद जी धर्म जिज्ञासा का लिखते हैं अर्थ कि धर्म का परिकाष्ठा क्या है, धर्म का सबसे ऊपर का स्तर क्या है। धर्म के ऊपर का स्तर है भगवत प्रेम और वो है भक्ति में। तो यहां लिखा है धर्म का ऊपर का स्तर और उसको कहते हैं शुद्ध भगवान की प्रेममयी सेवा। और दोनों महावीर युद्ध करने के लिए फिर इंद्र और वृत्तासुर एक दूसरे से भिड़ गए। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ गए तो क्या हुआ, कैसे भिड़े, तो महाराज परीक्षित को संबोधन करते आविद्य आविद्य परिग्रम वृत्त कारणाया सम अरिंद्र अरिदमह इंद्राया प्राहिणोद घोरम वाम हस्ते न मारिश मारिश। ये परीक्षित महाराज, मारिश परीक्षित को संबोधन है। परीक्षित महाराज वृत्तासुर ने अपने हाथ में गदा को लिया और उसको घुमाया और घुमाने के बाद उसने अपने शत्रु अरिदमह, तो ये अरिदम जो शब्द है, अपने शत्रु को जो हरा सके जिसमें ये सामर्थ्य हो, उसने घुमाया और इंद्र की तरफ फेंका, और इंद्र की तरफ फेंका किससे? उल्टे हाथ से, क्योंकि सीधा हाथ तो पहले ही कट चुका था। उल्टे हाथ से गदा को पकड़ के घुमा के हवा भर के और तेजी से जो शत्रु को हरा सकने में समर्थ है इंद्र की ओर रवाना किया। अब जब गदा इंद्र की तरफ जाने लगी तो इंद्र ने क्या किया? सतो वृतस्य परिग्रहं करम च करम भो कर भोपम छिद्देत युगपद देवो वज्रीणा शतः प्रवर्णा। या इंद्र का नाम है वज्रीणा। वज्रीणा मतलब जिसके हाथ में वज्र है। वज्रधारी इंद्र ने एकदम वृतासुर की फेंकी हुई गदा के साथ उसका उल्टा हाथ भी जड़ से उखाड़ दिया। जैसे सीधा हाथ कुहाड़ा उखाड़ा था त्रिशूल के साथ, ऐसे गदा के साथ उल्टे हाथ को भी काट दिया। अब वृतासुर की क्या हालत है? अब वृतासुर की हालत ही है, यहां वृतासुर का दर्शन करा रहे हैं। दोरभ्याम उत कृत मूलाभ्याम, दोनों बाजू जड़ से उखड़ चुकी थी, कंधे से दोनों मूल से उखड़ चुकी थी। इसका मतलब कंधों से दोनों बाजू अलग हो चुकी थी। बभू रक्त सर्व असुरहा, और ये वृतासुर के दोनों कटी हुई भुजाओं से खून बह रहा था, रक्त बह रहा था। छिन्न पक्ष यथा गोत्र, छिन्न पक्ष यदा गोत्र, गोत्र कहते हैं पर्वत को, और छिन्न पक्ष मतलब जिसके पर कटे हों। थोड़ा सा तात्पर्य छोटा सा इस श्लोक का प्रभुपाद जी ने दिया है। इससे संकेत होता है कि पहले पर्वतों को पंख होते थे और वो उड़ते थे और किसी महानगर के ऊपर जाके बैठते थे तो सबको नाश कर देते थे। तो इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के सारे पर काट दिए, ऐसी प्राणों में कथा आती है। तो ऐसे लगता था कि वृतासुर के दोनों भुजाएं थे पर वो कट गए हैं, और बाकी वृतासुर की सुंदरता ऐसी लग रही है कि बिना परों के पर्वत है। और उस पर्वत का क्या हुआ है? खाद भ्रष्टो, आसमान से गिर पड़ा है पर्वत, ऊपर से गिर पड़ा है क्योंकि उसके पर कट गए हैं। किसके द्वारा? वज्रिणा हत, इंद्र ने वज्र से उसके दोनों बाजू काट दिए हैं। अब उसकी शोभा ऐसी हो रही है जैसे कोई लहू बहते हुए दोनों भुजाओं से बहुत बड़ा पर्वत, इसके आकार का वर्णन है, वो पर्वत है जो आकाश से नीचे गिर रहा है। और आगे कहते हैं, अब वृतासुर ने क्या किया? महाप्राणो महावीर्यो महासर्प एव द्विज दीपम। महाप्राणो बहुत बड़ा शक्तिशाल है, उसमें अभी भी साहस है। महावीरो बड़ा वीर है, बड़ा शक्तिशाली है। महासर्प एव द्वीपम, द्वीपम कहते हैं हाथी को। महासर्प एव, जैसे सर्प रेंगता है वो इस तरीके से आगे बढ़े तेजी से। कृत्वा अध्राम हनुम भूमौ, जो नीचे का उसका जबड़ा है उसको धरती के ऊपर रखा। जो कृत्वा अधर, अधर कहते हैं अधर, अधर का मतलब नीचे, और हनु का मतलब जबड़ा, उसको रखा भूमि के ऊपर। दैत्यो, दैत्य ने दिव्य उत्तराम हनुम, और जो ऊपर वाला जो उसका जबड़ा है वो ऊपर की तरफ आकाश की तरफ कर दिया। अब मुंह खोल दिया, इसका मतलब बड़ा मुंह खोल दिया। महागंभीर वक्त्रेण, अब उसका मुंह कैसे लग रहा था? जैसे बहुत बड़ा, पूरा आकाश ही जैसे उसमें समा गया हो। नभो गंभीर, नभ का मतलब आकाश। गंभीर वक्त्रण, वक्त्रण का मतलब मुख, बहुत बड़ा। और ले लियो उल्बेना जीवा, और उनके अंदर उसकी जीवा जो है वो ऐसे लग रही थी कि कोई बड़ा सर्प है जो इधर से उधर घूम रहा है, वो सर्प की तरह वो घूम रही थी। ले लिया का मतलब सर्प है, और उल्बेना का मतलब भयानक, और जीवया उनकी जीवा ऐसे भयानक सर्प की तरह अंदर घूम रही थी। और फिर उसने क्या किया? दंष्ट्राभि काल कल्पाभि, और उनके दांत जो है बड़े कराल मृत्यु के समान काल कल्पाभि, ग्रसमी जगत्रियम, ऐसे लगता था कि तीनों लोकों को वो निगल जाएगा, ऐसा भयानक था। और उस फिर क्या किया उसने, अति मात्र महाकाया, उसका शरीर बहुत बड़ा भारी था, आक्षिपम तरसा गिरिम, वो जैसे पर्वत कोई हो ऐसे वो अपने पांव से इस धरती को दबा रहा था, गिरिराट पाद चरीवा चारीवा, गिरिराट जैसे पर्वत कोई चल रहा, हिमालय चल रहे, पांव से इस धरती को ऊपर रोनता हुआ आगे चल रहा था, पदभ्याम निर्जयन महिम, धरती उनके पांव के दबी जा रही थी, जग्रास समासाध्या विज्रिणम सवानम, और उसने आगे बढ़कर मुंह खुला हुआ था, पांव से धरती को रोनता हुआ आगे गया, और वज्र हाथ वाले इंद्र को उसके हाथी ऐरावत के साथ निगल गया। दोनों हाथ नहीं थे लेकिन उसका भयानक मुख और बड़े काया के शरीर के साथ आगे बढ़ा और पूरे मुख के अंदर इंद्र और उसके हाथी को पेट में निगल गया, जैसे कोई बड़ा अजगर हाथी को निगल गया हो। अजगर वृत्रासुर का मुंह अजगर की तरह है और हाथी तो एरावत था ही, और उसके ऊपर इंद्र इन दोनों को निगल गया। अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए, अब हाहाकार मच गया, कहां हाहाकार मचा, वृत्तग्रस्तम तमालोक्य, जब देखा सबने देवताओं ने देखा कि वृत्त ने वृत्ता ने वृत्रासुर लिखा ही नहीं है, वृत्त वृत्त ने निगल लिया है इंद्र को, तम का मतलब इंद्र को, सर्पा जपत्य सुराहा, किसने देखा, स प्रजापत्य, स का मतलब साथ में, प्रजापतियों के साथ ने ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं ने देखा, तो कहने लगे हा कष्टम इति निवृणास, हाय 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 क्या हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, चुक्रशु हो समहर्षय, और कौन दुखी हो गया, समहर्षय, महर्षि भी उसमें बहुत बड़े चिंतित हो गए, अरे इंद्र इंद्र क्या हो गया, वृत्रासुर ने उसको निगल लिया, इंद्र की वज्र भी उसके अंदर, इंद्र का हाथी भी उसके अंदर, सब चला गया, हाहाकार मच गया। लेकिन हाहाकार मचा फिर भी क्या था, सुखदेव महाराज कहते हैं निगीरणो अपि असुरेन्द्रेण निरिंग्र निगृणो अपि, भले निगल लिया फिर भी किसने निकल लिया, असुरेन्द्रेण असुरेन्द्रेण असुर इंद्र असुरों के राजा ने, देखो इंद्र का मतलब यहां राजा है, असुरेन्द्रेण इसका मतलब वृत्रासुर ने भले ही निगल लिया फिर भी न ममारोदरम गतः, फिर भी न ममार उद्रम, उसके पेट में इंद्र मरा नहीं, न ममार मरा नहीं इंद्र उसके पेट में, क्यों नहीं मरा, क्या बात थी उसको, महापुरुष संधो संधदो, महापुरुष का मतलब नारायण, कल महापुरुष का वर्णन आया था, विष्णु को महापुरुष कहते हैं और जो विष्णु के भक्त हैं उनको भी महापुरुष कहते हैं, तो यहाँ नारायण कवच इंद्र ने पहना हुआ था, क्योंकि भगवान के नाम का कवच पहना हुआ था इंद्र ने, इसलिए वृत्रासुर के पेट में वो मरा नहीं, क्योंकि उसको नारायण उसने नारायण कवच पहना हुआ था। महापुरुष सनद्धो पहना हुआ था, और इंद्र का योग माया बले ना, उसको अपनी योग माया का भी बल था, देवताओं को भी अपनी योग माया का बल था, इस योग माया के बल के कारण और नारायण कवच को धारण करने के कारण इंद्र जो है वो वृत्रासुर के पेट में निगल जाने के बाद भी मरा नहीं। तो इंद्र ने क्या किया, अब इंद्र जो कर रहा है वो सुनिए, इंद्र ने क्या किया, भित्वा वज्रेण तत कुक्षिम, वज्र से वृत्तासुर का पेट चीर दिया। अंदर से ही वज्र को चला के वृत्तासुर की कुक्षी कहते हैं पेट को, उसका पेट चीर दिया। निष्क्रमय बलभिद विभोह, ये इंद्र का पहले का किया हुआ जो पराक्रम है, बल राक्षस को उसने एक बार मारा था, निष्क्रमय बलभिद जैसे बल को मारा था वैसे इंद्र वहां से शक्तिशाली विभु इंद्र वहां से बाहर निकल आया वहां से निष्क्रमय बाहर निकल आया। और फिर क्या किया, उचक्रत श्र शत्रो ग्रीसिंघम इवोजसा, और उसके बाद वृत्तासुर का जो सर था वो कैसे लग रहा था, बहुत एक पर्वत का ग्रीसिंघम एक पर्वत का बहुत बड़ा शिखर हो ऐसे लग रहा था, उस वृत्तासुर के सर को काटने लगा। कैसे काटा और कितना समय लगा ये लिख रहा है, वज्रस्तु तत कंधरम आशोह वेगः, वो वज्र जिसके अंदर 100 दांत हैं, अब नाम आया था वज्र का, वज्र कैसे है, शत 100 वर्ण दांत है उसमें, कंधरम का मतलब गले के ऊपर, वृत्तासुर के गले के ऊपर बहुत तेजी से वो चल रहा था वज्र, लेकिन कितना समय लगा, क्रंतम समंतात परिवर्तमानः, जब सूर्य दो आयनों में जाता है, दो आयन का मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन, इसका मतलब पूरा साल, साल में दो होते हैं आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, और छह होते हैं ऋतु, दो बड़े पक्ष, छह ऋतु, 12 महीने और हर महीने के दो पक्ष, तो यहां एक साल लग गया, जब गिने अहर गणे ना दिन अगर गणेंगे तो स ज्योतिषाम अयने वार्ते त हत्या, तो एक साल लग गया उसके गर्दन को, उसके सर से अलग, उसके सर को गर्दन काट के धड़ से अलग करने में वज्र को एक साल तेर धार से चलने में लग गया, और तब उसका सर कटा। तब उस वक्त क्या हुआ, तदा चखे दुंदुभ्यो विंदो विंदोर गंधर्व सिद्धा स महर्षि संगा वार्तराग्न लंगे स्तन अभिष्टवान मंत्रे मुदा कुसुमय अभ्यवर्षो। तदा एव खे, तब आकाश में जो खड़े थे कौन खड़े थे, गंधर्व सिद्ध महर्षियों के साथ जो खड़े थे उन्होंने दुमदुबियां बजाई, ऊपर से ढोल नगारे बजने लगे, और वार्तक घन लिंगैस्तम, इसका अर्थ है वृत्तासुर के मारने वाले इंद्र, वार्तर घन वर्त वृत्तासुर को मारने वाले लिंग ही जो इंद्र थे उसकी क्या करने लगे, अभिश्वनोश उनकी प्रशंसा करने लगे, उनके गुणगान करने लगे, मंत्र उच्चारने लगे, और आनंद में मुग्ध होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो वृत्तासुर के शरीर को कटने के बाद इंद्र की प्रशंसा करते हुए ऊपर से जो देवता और ऋषि गण है गंधर्व चारण है उन्होंने पुष्प वृष्टि की और उनकी महिमा के मंत्र गाए। अब ये आज पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ते हैं, वृतस्य देहान निष्करांतम आत्म ज्योति अरिंदन अरिंदम पश्यताम सर्व देवानाम अलोकम संपद्यत। वृतासुर देहान, वृतासुर के देह से निष्करांतम बाहर निकल आई। वृतासुर के देह से बाहर क्या निकला? आत्म ज्योति, उसकी जो आत्मा थी वो प्रकाशमय आत्मा वृतासुर के देह से बाहर निकली। हे अरिदमन, हे महाराज परीक्षित, ये संबोधन है, हे महाराज परीक्षित, शत्रु को दमन करने वाले, आश्चर्य हुआ, वृतासुर के शरीर से आत्मा बाहर निकली। इसका मतलब एक साल आत्मा अंदर थी, क्योंकि शरीर कटने में एक साल लग गया, ये बड़ा आश्चर्य है। इसी कारण से इसका तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखा है वो हम थोड़ी देर में सुनेंगे कि वृतासुर समाधि में था, एक साल लग गया, उसके बाद आत्मा निकली जब गर्दन कटा तब। और आत्मा कहाँ गई? पश्यताम सर्व देवाना, ये जो सारे देवता आकाश में पुष्प वृष्टि कर रहे थे ना, इन्होंने देखा, इनके देखते देखते इनके सामने आलोकम, आलोक कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश का मतलब ब्रह्म ज्योति से ऊपर जो वैकुंठ है वहां आत्मा इसकी संपद्येत वहां पहुंच गई, उसने वो गति प्राप्त की वैकुंठ में। तो ये आश्चर्य है कि वृतासुर के शरीर काटने के ऊपर जो पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, इंद्र का गुणगान हो रहा था, लेकिन आत्मा वृतासुर की भगवत धाम जा रही थी। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके ऊपर जो है वो है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं असल में इंद्र हार गया और मर गया, वृतासुर नहीं, क्योंकि वृतासुर ने जैसे ही इंद्र को जबड़ों के द्वारा खुले हुए मुंह से अपने पेट में निगल लिया, उसके बाद वृतासुर ने समझा कि ये तो मर गया, और फिर वृतासुर भगवत धाम जाने के लिए समाधि में बैठ गया। क्योंकि वृतासुर समाधि में था तो उस वक्त उनका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, तो उसका फायदा उठाते हुए, लाभ लेते हुए इंद्र ने उसके पेट को काटा। लेकिन क्योंकि वो समाधि में था इसलिए एक साल उसके गर्दन को काटने में लगा, और उस और वृतासुर जो है योग समाधि में था, उसका गर्दन काटना चाह रहा था, लेकिन उसके गर्दन इतना सख्त था कि उसको 360 दिन लग गए। असल में वो शरीर पहले ही छोड़ के चला गया था, ऐसे पहले ही उन्होंने शरीर से तो मोह, तो पहले मोह तो कथा में ही उठ, अपने प्रार्थना में मोह को तो उसने त्याग ही दिया था, लेकिन वो एक समाधि में थे और वृतासुर के मृतक शरीर को इंद्र काट के बाहर निकल के आया। और वृतासुर कहाँ गया? वृतासुर भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, पार्षद हुआ, कौन से भगवान का? संकृष्ण का। और आलोक का मतलब है वैकुंठ, और वैकुंठ में संकृष्ण का नित्य धाम है, वहाँ वृतासुर पहुँच गया। तो यहाँ हमारी आज 12वें अध्याय की कथा पूरी होती है, और ये सुन के परीक्षित महाराज 13वें अध्याय में कहेगा ऐसे असुर को ऐसी उत्तम गति कैसे मिली। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कहेंगे कि ये उत्तम गति इसलिए मिली कि ये पहले चित्रकेतु महाराज थे, और चित्रकेतु महाराज की पूरी कथा, उनको संतान न होने के ऊपर अंगिरा ऋषि ने उसको पुत्र प्राप्ति, हर्ष और शोक दोनों, सुख और दुख देगा ये वचन दिया, पुत्र हुआ एक रानी से, बड़ा खुश हुआ, फिर बाकी रानियों ने उस पुत्र को विष दे दिया, पुत्र के मरने के ऊपर चित्रकेतु बड़ा विलाप करने लगा रानी के साथ, फिर अंगिरा के नारद के साथ आए, इनको बड़ा दिव्य उपदेश दिया, उसके बाद चित्रकेतु को नारद जी ने उसके बेटे को जीवित करके उसको दिखाया, बेटे ने उसको कहा कि हमारे कर्मों से हम आपके पुत्र बने, अब हमारा समय समाप्त हो गया, और कई बार हम एक दूसरे के माता पिता बनते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। तो उसके बाद उसको दिव्य ज्ञान देकर नारद जी ने उसको बहुत ऊपर का स्तर संकर्षण का सानिध्य प्राप्त कराया, और फिर चित्रकेतु के द्वारा हम पहले कह चुके हैं कि विद्याधर बनने के बाद शंकर जी की गोद में बैठी हुई पार्वती के ऊपर हंसने के ऊपर पार्वती जी ने श्राप दिया, इसलिए वृतासुर बना। तो इस कथा के बीच में एक अध्याय और पड़ा है कि वृतासुर के वध के कारण भी इंद्र को इसके पाप लगा, और उसके पीछे एक पाप बूढ़ी औरत के रूप में लगा, इंद्र लोक छोड़ के चला गया। तो ये बीच में एक अध्याय की और कथा है। तब नोस जो है ये चंद्रवंश का एक महाराज था, वो इंद्र के पद के ऊपर जाके बैठा, लेकिन पद का नशा ऐसा होता है और बल और पद ये जो ऐश्वर्य जब मिलता है तो उसने सची के साथ भोग करना चाह। सची ने अपने गुरु से कहा, बृहस्पति से, क्या करूं, मेरा पति तो इस वक्त वृद्धासुर के पाप के कारण अदृश्य है और ये जो इंद्र बना हुआ है ये मुझसे भोग करना चाह रहा है। बृहस्पति ने कहा, आप इसको हाँ कहो और कहो कि सप्त ऋषियों के कंधे के ऊपर चढ़ के आए। तो सप्त ऋषियों को नोस ने कहा कि मुझे कंधे में चढ़ा के चलो। तो अगस्त ऋषि आगे पालकी को उठा के जा रहे थे और ये इतना काम में मदमस्त था, बोला सर्प सर्प, जब सर्प कहते हैं संस्कृत में, जल्दी चलो क्योंकि सांप बहुत जल्दी चलता है। तो अगस्त जी को आया क्रोध, बोला सर्प सर्प करता है, जा सर्प बन जा। वो एकदम नोस वहां से पतन हुआ और अजगर बना और नोस ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ऋषियों इस पद के नशे में मैं इंद्र के पद के ऊपर जो जो रति को भोगना चाह रहा था, मैं मेरे को आपने साप दिया है, लेकिन मैं ऐसे मुक्त कैसे होऊंगा, मुझे कृपा करके बताओ। कहा कि जब तुम्हारे को किसी महर्षि, किसी महान आत्मा से, किसी सत्पुरुष से तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम्हारा पतन होगा और दिन के छठे भाग में तुम्हारे को मेरे ऋषियों ने कहा तुम्हारे को जो भी मिलेगा खाने को वो तुम्हारे से छुड़ा कर नहीं सकेगा। ये अजगर बना है, महाभारत में वर्णन आता है, नोस अजगर बना है। पांडव जो है वो वन में है और भीमसेन कहीं गया है और ये छठा काल दिन का है, छठा भाग है, और अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया है। भीमसेन अजगर को कुछ नहीं समझता है, बोला पहाड़ को मैं उखाड़ के फेंकता हूँ, अजगर क्या करेगा। लेकिन आज अजगर से भीम छुड़ा नहीं पा रहा है अपने आप को, और भीम को न देखकर युधिष्ठिर महाराज वहां आते हैं और युधिष्ठिर महाराज अजगर को देखते हैं और भीम को देखते हैं कि पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। पास जाके देखते हैं कि कुछ सांस चल रहे हैं, तो कहते हैं भीमसेन को अजगर पकड़ ले, ये संभव नहीं है, ये कई हाथियों को उठा के फेंक देता है, अजगर इसका क्या कर सकता है। उस वक्त अजगर कोई दिव्य है ऐसे समझ के युधिष्ठिर महाराज ने अजगर से बातचीत करना शुरू की, और जैसे अजगर से बातचीत की कुछ प्रश्न उत्तर हुए और अजगर का श्राप खत्म होना था क्योंकि युधिष्ठिर महाराज से बात हो रही थी, वो महान है। फिर अजगर से वापस नोस महाराज निकल के कहा, मैं आपको बताता हूँ, सुन लो युधिष्ठिर महाराज, बड़ा पद और बड़ा नाम, बड़ी कुर्सी और बड़ा वैभव पतन का कारण होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप कैसे कहते हो, बोला मैं अपने जीवन की अनुभूति के ऊपर कहता हूँ, मैं इंद्र के पद के ऊपर पहुंचा, उस पद के नशे से, उस कुर्सी के नशे ने, उस बड़े मेरे महानता के नशे ने मेरे से ऋषियों का अपराध करा दिया और मैं इस अजगर की जोड़ में आया। आज आप जैसे महापुरुष के साथ संभाषण करके, बात करके मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। तो यहाँ ऐसे ये पूरी कथा आगे चलती है, तो ये सब कथाएँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ आज सब आप लोगों ने जो है संदेश को देखा है कि कल से हम 11 स्कंद श्रीमद् भागवत में जो उद्धव गीता है, उद्धव गीता है उसके अंतर्गत 7वें अध्याय से जहाँ अवधूत, असल में वो भगवान दत्तात्रेय है जो महाराज यदु को उपदेश देते हुए 24 गुणों से, गुरुओं से, यानी प्रकृति के 24 तत्वों से उसने क्या सीखा है, ये 2-3 अध्यायों की कथा है जो हमको बद्रिक आश्रम की यात्रा में करनी थी, उस कथा को हम कल से शुभारंभ करेंगे। और कल का समय अगर आप लोग सब सहमत हों तो 6:30 के करीब रखें, थोड़ा सा और पीछे कर लें, और फिर भगवान की जैसे इच्छा होगी, जो प्रेरणा मेरे साथ, तो सब जो मेरी सामग्री और शास्त्र तो है नहीं अध्ययन के, जो है उसके आधार पर जो भगवान प्रेरणा देगा वो आपके भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में आपको परोसेंगे और उससे आपके हृदय में कृष्ण भक्ति का पुष्टि हो, जागृत हो, उन्नति हो और आपके मुख से सदा भगवान के नाम का उच्चारण हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कामना करते हुए इस वृत्तासुर के प्रसंग को आज यहाँ पूर्ण आवती पे पहुँचाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए।
प्रभु जी एक चीज छोटी सी पूछनी, आप बता रहे थे कि अप्रकट लीला और अवतार कार लीला का जो,
हाँ जी हाँ जी,
उसमें श्रीमद भागवतम का कुछ आपने बताया था, वो मेरे को समझ नहीं आया कि
भागवत जो है वो प्रकट लीला है, भागवत अवतार काल की लीला है। वो जो भगवान जब अवतार लेते हैं, जो लीला करते हैं ना, वो भागवत में है। लेकिन नित्य लीला तो हो रही है, वो तो अनंत है, उसका कोई गिनती नहीं है। कितनी लीलाएं हैं भागवत में, तो बहुत थोड़ी संक्षेप में अवतार काल की लीलाएं हैं। लेकिन अवतार काल की लीलाओं को सुनने से, प्रकट लीलाओं को सुनने से अप्रकट लीलाओं में प्रवेश मिलता है, और अप्रकट लीलाओं से ही प्रकट लीलाएं प्रकट होती है। ये भागवत के महात्म्य स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। जब सोने ब्रज के अंदर वज्रनाभ और परीक्षित महाराज सांडल्य ऋषि के पास गए, तो सांडल्य ऋषि ने भगवान की नित्य लीला और अप्रकट नित्य लीला और व्यवहारिक प्रकट लीला का वर्णन किया है, और कहा का भगवान की नित्य लीला तो हो रही है, लेकिन अवतार काल की लीला भगवान की अभी समाप्त हो गई है, लेकिन नित्य लीला हो रही है। तो ये दो भगवान की लीला, इसलिए नित्य लीला में भक्त प्रवेश करना चाहते हैं। प्रकट लीला में तो अब यह प्रकट लीला तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन नित्य लीला में भक्त जो है, यहाँ से जब अपनी लीला कही, तो महात्मा ऐसे हैं जो अभी भी भगवान की नित्य लीला का अनुभूति करते हैं। ऐसा भागवत के महात्म में है कि जमुना भगवान की कालिंदी चौथी पटरानी, उसको सब और भगवान की रानियां कहती हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, हमारे को विरह हो रहा है उनका, और आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं। तो जमुना महारानी कहती है, मैंने राधा रानी का किंकर्तव स्वीकार कर लिया है, मैं राधा रानी की सेविका बन गई हूँ, इसलिए मुझे भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया है, इसलिए श्री कृष्ण से मेरा विरह नहीं है, मेरी जुदाई नहीं है, मैं नित्य उनके संग में हूँ। तो सब रानियों ने कहा कि हमको वो संग कैसे प्राप्त हो। बोला कोई भक्त कृपा करे तो। बोला भक्त कैसे मिलेगा। बोला जब भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो सब लोगों ने भगवान के नाम का कीर्तन किया गोवर्धन की तलहटी में, तो भगवान का पार्षद और मित्र उद्धव जी प्रकट हुए, और एक महीने तक उद्धव जी ने भागवत की कथा की, तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, और तब सभी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुए। तो ऐसे ही भागवत के महात्म में लिखा हुआ है, भागवत को सुनने से श्रद्धा पूर्वक आस्ते आस्ते हमारा हृदय जैसे शुद्ध होता जाएगा, भगवान के इस प्रकट लीला सुनने से अप्रकट लीला में प्रवेश मिलेगा, ऐसा जो है शास्त्रों का और आचार्य गणों का वर्णन है, जो है वो शिक्षा है। हरे कृष्ण।
एक छोटी सी चीज और पूछनी थी।
हाँ जी।
वृत्तासुर जब शरीर छोड़ रहा है, जैसे वो आप इसमें दिया हुआ है पर लास्ट से लोग के पर उनकी योग समाधि में है वो।
हाँ जी हाँ जी।
तो योग समाधि में ऐसा है कि वो जैसे वो कुंडली जागरण होता है और वो हेड में आ जाती है कुंडली, इसलिए उसको स्टिफ हो गई नेक, तो साल लगा पढ़ने में, क्या ये रीजन है।
असल में जो लिखा है उससे ऐसे लग रहा है कि वो तो भगवान के धाम चले गए, शरीर इतना स्टिफ हो गया था कि वो बाकी तो मरा हुआ शरीर था, उसको काटने में देर लग गई। मरे हुए को काटने में ज्यादा देर लगती है, जिंदा को काटना आसान है, ऐसे लग रहा है लिखने जो तात्पर्य से ऐसे दिख रहा है। वैसे वो समाधि में बैठ गया और उसके बाद अंदर पेट फाड़ के बाहर निकल के आया, और पेट तो फाड़ लिया लेकिन गर्दन काटने में टाइम ज्यादा लगा, ऐसे लिखा हुआ है। समाधि कौन सी लगाई, उसने तो कहा था कि मैं कुंडली उंडली की समाधि नहीं लगाऊंगा, मैं संकृष्ण के चरणारविंद का मन उसमें मैं समाधाव करूंगा, उसने अपने मुख से कहा है कि मैं संकृष्ण के चरणों में समाधि लगाऊंगा। तो इसमें कोई कुंडली उंडली का कोई यहाँ वो जो छह चक्कर भेदन वाली समाधि है उसका वर्णन इस भक्ति वाले मार्ग में नहीं है, लेकिन उनका वर्णन जरूर है शास्त्रों में, लेकिन इसमें नहीं है।
ठीक है।
कुंडलिनी वाले वैकुंठ धाम नहीं जाते हैं, वो तो यही कुछ अपना चमत्कार दिखाने बैठ जाते हैं। कुंडलिनी जो जागृत हो जाती है वो चमत्कार दिखाते हैं, वो वैकुंठ थोड़ी जाते हैं।
वही डाउट आ रहा था, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि
नहीं ये समाधि जो है ये भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना है। हाँ जी, हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है?
ठीक है,
जिसमें 22वें श्लोक के तात्पर्य में बताया था, जहाँ पे आप
वैदी और राग वैकुंठ वाली वैदी साधन भक्ति है और वृंदावन वाली राग अनुगा है,
दोनों जो है आप
दोनों।
लेकिन लेकिन हम तो वैदी भक्ति का ही बात,
आपको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास वैदी भक्ति है। निष्ठा तक वैदी भक्ति करेंगे, उसके बाद राग अनुगा आएगी। अब निष्ठा तक पहुंचे ही नहीं है, अभी अनर्थ निवृत्ति में चल रहे हैं। वैसे हम रागनों का भक्ति हमें मालूम नहीं है, हम रोज तुलसी पूजा करते हैं, रागनों का भक्ति में तुलसी पूजा रागनों का के मार्ग से चल रही है, उसमें रोज कहते हैं वृंदावन दियो बास, तुलसी महारानी की जो पूजा है रागनों का भक्ति का मार्ग है, हमें मालूम नहीं है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रागनों का भक्ति का है, लेकिन हम अभी तक हैं वैदिक के स्तर के ऊपर। हाँ जी, अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे कि कौन से भक्त का अनुगामी बनना है। वैसे गुरुजनों के अनुगामी बनने से भी राग अनुगा ही मार्ग हो जाता है, क्योंकि वो परिकर है भगवान के। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। कौन? हाँ जी,
विष्णु सऊदी अरब।
ओ विष्णु, विष्णु बोलो, विष्णु सऊदी अरबिया में शांति है। हाँ जी बोलिए, हाँ विष्णु जी बोलिए। देखो भय है मृत्यु का, चाहे वो करोना से आए चाहे कार के एक्सीडेंट से आए या तो चाहे हार्ट अटैक से आए, मृत्यु तो मृत्यु ही है, भय है मृत्यु का। लेकिन करोना का पता नहीं लगता है कि हमारे अपने रिश्तेदार भी करोना लेके घर में आ गया है कि काम वाला भी लाया, उसका डर लगता है। जैसे वो यहाँ देख रहे हैं कि रिश्तेदार हमारा आया है एक बार से, तो उसके पास करोना तो नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण का है इसलिए इसका डर ज्यादा लगता है। तो ये डर जो है इस धरती, ये इस दुनिया को कहते ही मृत्यु संसार है, इसलिए हमारे साथ डर इसके साथ आया है। इसलिए हमारे आचार्यों ने गाया, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण का भजन करो जो भय से मुक्त करने वाला है। और संसार में कोई भय से मुक्त करने वाला नहीं है, कैसी भी परिस्थिति है भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए। असल में ज्यादा भय होता है खबरें सुनने से, और जितने ये न्यूज वाले हैं ना, ये ऐसे भड़काऊ न्यूज बताते हैं जैसे लगता है कि बस ये इसके अंदर, ये टीवी के अंदर ही बस है और निकल के बाहर आएगा और किसी को पकड़ लेगा। तो हम क्या है, शरण लेते हैं खबर वालों के, ये जो न्यूज़पेपर वालों हैं और ये टीवी वाले हैं ना, इनका आश्रय लेते हैं, इसलिए भयभीत होते हैं। अगर हम भागवत का और भगवत हरि नाम का आश्रय लें तो भय से मुक्त हो जाएं। ये बहुत आसान सी बात है। हमने शरण किसका लिया हुआ है, खबरों का, और ये वो यहाँ हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो हमारा दिमाग थोड़ा हिल जाता है। और हम ऐसे भागवत दो चार पाँच घंटे सुनते रहें, तो आपको एक घंटे में कोई भय हुआ जरा बताओ? विष्णु अभी भय हुआ, एक घंटा सवा हो रहा है,
अभी तो नहीं।
किसी को भय हुआ क्या?
नहीं, अभी तो
अभी किसी को भय नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने भागवत का शरण लिया है। और जब भागवत का शरण लेंगे तो भय से मुक्त होंगे, हरि नाम का शरण लेंगे तो भय से मुक्त होंगे। और अगर शरण लेंगे हम न्यूज वालों का और समाचार वालों का, तो हमेशा समस्या में रहेंगे, क्योंकि वो है ही परेशान करने के लिए, नहीं तो उनका धंधा कैसे चलेगा।
एकदम सत्य वचन।
हरी बोल। खबरें कम सुने, ज्यादा सुने मत, किसी एक से पूछ ले क्या हुआ इतना। जो मर गए उसके लिए प्रार्थना करो कि उनको सदगति मिले, जो बच गए हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि भक्ति करें। और ये टेलीविजन वालों के लिए प्रार्थना करो कि चुप रहें, ज्यादा ये ज्यादा परेशान न करें किसी को, ऐसे परेशान करते हैं, हंगामा मचा देते हैं।
हरे कृष्ण,
धन्यवाद। बोलो शुद्ध सत्व।
अजी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है।
हाँ जी।
कि वत्रासुर, हम देखते हैं कि पहले वो स्वयं मरना चाहता था और इंद्र को उसने प्रोत्साहित भी किया कि मुझे मारो वज्र द्वारा। लेकिन यहाँ 35वें श्लोक के तात्पर्य में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वत्रासुर ने इंद्र और उसके हाथी को निगल लिया और ये मान लिया कि वो मर गया है और वो युद्ध हावरव से युद्ध की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद वो समाधि में बैठ गया जाके। तो क्या ये नहीं यहाँ पे आ रहा, पहले इंद्र स्वयं जो वत्रासुर स्वयं मरना चाहता था, स्वयं उसको प्रेरित कर रहा था, बाद में वत्रासुर ने मान लिया कि इंद्र मर गया और मैंने उसको निकल दिया और वो मर गया, तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं यहाँ पे आ रहा।
ये तो वृत्रासुर कहते हैं, देखो मैं इस हालत में हूँ फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म को करूंगा, मेरे को लड़ाई करनी है मैं लड़ता रहूंगा, तुम्हारे को मारने का प्रयास करूंगा, तुम अपना प्रयास करो, सफल जो भी होगा भगवान जिसको सफलता देगा वो सफल होगा, मेरे कहने से मैं नहीं होऊंगा, तेरे कहने से तुम नहीं होगे। तो ये तो उसके वचन सत्य है कि विजय भगवान ने देनी थी इंद्र को, कि इंद्र पेट में जाने के बाद भी बच गया, तो वो उसके वचन सत्य होते हैं, लेकिन उसने अपने कर्तव्य कर्म को किया, ऐसे नहीं है कि उसको कहा कि बस मेरा गर्दन खड़ा है तुम वज्र मारो मुझे, उसने उनके साथ अपना युद्ध किया, कर्तव्य कर्म किया, लेकिन वो विजय के लिए नहीं किया, अपना धर्म समझ के किया। तो ये इसका कोई विराद आभास नहीं है, ये तो दृष्टिकोण देखने की है। वृत्ता विश्वनाथ चक्रवर्ती कपात का कहने का विचार ये है कि असल में भगवत धाम प्राप्त करने वाला विजयी हुआ, संसार में रहने वाला हार गया, इसका अर्थ ये है। वो मर ही चुका था का मतलब उसने कहा कि अब इंद्र है ही नहीं, पेट में चला गया, मैं तो बैठ के भगवान के धाम चला जाऊं, लेकिन इंद्र नहीं मरा क्योंकि भगवान ने उसको विजय देनी थी, भगवान ने इंद्र को बचाना था और वृत्रासुर को मार के ही उसकी पुष्टि कर दी, उसके भाव का रक्षण कर दिया और इंद्र को जिला के और इंद्र पद दे के उसकी भी रक्षण किया, पोषण दोनों का किया भगवान ने। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। नारद कुंड कहाँ है माता जी? नारद कुंड समाधि में है क्या? वृंदावन में है या है? हरे कृष्णा। चलो भाई धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ जी,
प्रभु जी आ गए।